भाभी
कहाँ है आपके भाई साहब राजा राम?
कौन? मनु भैया। अरे उनसे तो सालों से नहीं मिले है यहाँ।
कोमल
कौन? कोमल
एक बेहतरीन एक्टर की पहचान यही होती है कि फिल्म में उसका रोल भले ही छोटा क्यों ना हो पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर बड़ी छाप छोड़ कर जाता है।
बारात इससे आगे नहीं जाएगी।
अजी हाँ।
आय हाय तेरे टशन
सब झूठा।
एक बेहतरीन एक्टर की पहचान यही होती है कि उसके किरदार का नाम काम और डायलॉग्स सालों साल लोगों को याद रहते हैं।
अरे हमारा नाम हा? पप्पी पप्पी नाम है हमारा। अरे सच में अब क्या करें नाम ही ऐसा है बदल दे पप्पा कर दे।
एक बेहतरीन एक्टर की पहचान यही होती है कि भूमिका हंसाने वाली हो या रुलाने वाली वो दोनों में ही कामयाब होता है।
क्या 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 सोच रहे हो? ना 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 बिल्कुल नहीं नहीं नो नहीं 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 हंसो मत बाप मेरा खून के आंसू रोने पड़ेंगे ना तब याद आएगी हमारी। नो डोंट गो टू द डार्क पाथ अंडरस्टैंड डोंट।
गरीबी में जीने कला है हम सिखाएंगे तुम्हें क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब दादा गरीब परदादा गरीब उसका बाप गरीब सब गरीब।
जब जंग दिल और दिमाग की हो ना मियां तो हमेशा दिल की सुनो क्योंकि दिमाग क्या होता सही और दिल क्या होता सही।
एक बेहतरीन एक्टर उस दीपक की तरह होता है जो तमाम बड़े सितारों की मौजूदगी में भी अपनी लौ बुझने नहीं देता बल्कि अपनी रोशनी से पूरी फिल्म को जगमगा देता है। ऐसा ही एक दीपक है दीपक डोबरियाल।
दीपक बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद रचा में।
शुक्रिया।
मेरा पहला सवाल तो यही कि आप जो भी फिल्म करते हैं उसके बाद लोग आपको उसी किरदार के नाम से पुकारने लगते हैं लेकिन आपकी अगर मैं बात करूं तो भाटी गेंदा बप्पी जी कोरी कौन सा किरदार सबसे करीब है दीपक डोबरियाल के?
इसमें सभी है मतलब करीब तो मतलब दायां बाएं का जो रमेश मजीला है
हाँ।
वो काफी क्लोज है क्योंकि उस फिल्म को करते समय ये था कि ज़्यादातर 70% कास्ट वहीं के थे पहाड़ों के तो मैंने कहा यहाँ तो एक्टिंग करनी नहीं यहाँ वो हो जाना है जो है तो जैसा निकलता है तो उनसे जो निकलेगा उस तरह का रखना है। तो और काफ़ी जो मैं हूँ रियल लाइफ में एज ए पहाड़ी एज ए मतलब स्ट्रगलर सब चीज़ जो है और कहानी भी मैच करती थी तो वो वैसा हो गया तो वो काफ़ी क्लोज है।
पहाड़ के आप रहने वाले हैं लेकिन बचपन आपका दिल्ली में बीता है सो थोड़ा सा अपना परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए।
शुरुआत के 5 साल में गढ़वाल में ही था उसके बाद पिताजी को दिल्ली में स्टाफ क्वार्टर्स मिल गए तो वहाँ पे आ गए हम शिफ्ट हो गए स्कूल कॉलेज फिर दिल्ली में किया और थिएटर वगैरह सब वहीं पे। तो लेकिन साल में 2 महीने की जो छुट्टियाँ होती थी स्कूल की तो वहाँ वो गाँव जाते थे 2 महीने इतना छक के पहाड़ों से हम जुड़ के आते थे रूबरू होके तो वो एक रहा स्कूल कॉलेज तक भी।
कैसे बच्चे थे आप सीधे शरीफ नहीं बदमाश था?
नहीं अब दोस्तों को दिखाने के लिए वो जो आपके दोस्त होते हैं ना उनकी नज़र में दिखाने के लिए आप थोड़े से हरकतें बदमाशी करते थे अदरवाइज मैं बहुत शरीफ था अपनी कॉलोनी में बहुत शरीफ था मैं मतलब वहाँ पे बदमाश बच्चे छूट जाते थे मेरा नाम लेके मतलब कि किसी को फादर उसको डांट रहे कहाँ था 1 बजे तक तो दीपू भाई के पास अच्छा दीपू के पास था। शरीफ बच्चे का मुझे एग्जांपल दिया जाता था कि देखो उसके जैसा देखो उसके जैसा बनना वो देखो ऐसे तो जब लेकिन एक्टिंग में आया तो यहाँ पे ये था कि यार उस दौरान ये था दिल्ली में कि जो ज़्यादा तेज़ और शातिर होता है वो अच्छा एक्टर होता है तो बस वही शातिरता भी सीखने की कोशिश की कि यार शातिर बन जाएं ये बन जाएं थोड़ा सा बैड बॉय टाइप का भी वो रखते हैं ये करते हैं वो करते हैं कि एक्टिंग के वो जो शेड्स हैं उनको खोजने के लिए कोई गाइड भी नहीं करता था उन्होंने तो खुद ही कुछ ना कुछ सीखना पड़ता था यार इस तरह का यार उस तरह का ऐसे ऐसे करके थोड़ी बदमाशियाँ शातिरपना तेज़ मतलब कोई जोक भी सुना रहा तो जोक पे नहीं हंसना है ना आप गधे लगते हो ऐसे करके ये वाला ये नहीं नहीं ठीक है हल्का सा ये सब जो सीखा तो उस तरह से करने की कोशिश की एक्टिंग थोड़ा बहुत आ गए थे लेकिन आज यहाँ पे आके ये महसूस होता है कि नहीं वो जो मासूमियत थी जो हमने छोड़ी है तेज़ बनने के चक्कर में उसमें सबसे ज़्यादा रस था लेकिन हमारे पास गाइडेंस नहीं थी उस चीज़ को कॉन्फिडेंस देने वाली कि वो बहुत अच्छी क्वालिटीज है ना। आप वहाँ से एक अलग किस्म का एक्सप्रेशन, अलग किस्म की एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो था नहीं। तो जैसे जैसे जो माहौल बनता गया, हम लोग भी वैसे होते चले गए। तो अब जो बचपन की बहुत छूटी हुई चीज़ें थी, मैं उनकी तरफ वापस जा रहा हूँ जो मैंने बदली थी, है ना। कि मैं वही कह रहा था कि मेरा असली ऑर्गेनिक चीज़ें क्या है, तो वो मुझे मिल रही हैं। तो 3-4 मिली हैं अभी, बहुत हैं।
जैसे?
मतलब जैसे कि जब मैं छोटा था, यहाँ तक कि 19-20 साल तक भी, कि जब भी कोई हंसाता था, कुछ हंसी आती थी मुझे, तो किसी ने जोक सुना है, तो मैं वो जोक जो है वो 4-5 दिन कैरी करता था हर समय। पढ़ाई करते समय भी हंस रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो वो जो जोक है वो, और ऐसे ऐसे खुश होता रहता मैं। तो एक बार एक दोस्त है हमारा, तो उसने एक जोक सुनाया और बड़ा कमाल का जोक था वो। तो मैंने कहा अच्छा, और सब हंसे, बड़ा तेज़ है यार, बड़ा तेज़ है, ये सब चल रहा था। और मैं 6th-7th में रहूँगा, और मैं अपना दूध का डब्बा लेके जा रहा था ऐसे, और हंसता हुआ उसी जोक पे 3 दिन बाद। और वो लड़का अपने फादर के साथ स्कूटर पे जा रहा था, और उसने बोला ओए तेरे को अब समझ में आया वो जोक। तो मैं ना हिल गया वहाँ पे, मैं शॉक्ड हो गया कि यार मैं तो बड़ा बुद्धू हूँ, हर कोई समझ जाता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, इसने कैसे पकड़ लिया। तो मैं ना वो हो गया, साइड हो गया उस चीज़ से, कि लोग एकदम पकड़ लेते हैं ये गलत बात है, ऐसा नहीं यार, तो वो ऐसा बनना कि कोई, मैं तो नहीं समझ पाता किसके अंदर क्या चल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी, तो वो जो चीज़ें थी कि उसे कैरी करने वाला। आजकल क्या है कि इस शहर में मशरूफियत जो है वो एक दिन में 50 है, तो आप कोई ढंग की चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें कैरी नहीं कर पा रहे। वो जो पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी उस समय की, जिसे आप कैरी करते थे इतना लंबा, आज वो नहीं है। तो जल्दी जल्दी आप शिफ्ट हो रहे हो, बदल रहे हो, ये है वो है, नहीं नहीं नहीं, तो वो उसकी ज़रूरत है।
और आज आप जिस इंडस्ट्री में, और आज जो वक्त है, वैसे भी आपके सामने कौन क्या बोल रहा है, वो क्या है, उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो पीठ पीछे क्या बोल रहा है, वो वैसे भी इतना सब कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कॉन्वर्सेशंस।
हाँ, वो भी समझ नहीं आ रहा किस रेफरेंस क्या है उसका उसके। लेकिन अब उसका भी एक रीज़न ये है कि बड़ा अच्छा सा है वो, एज एन एक्टर जो जो चीज़ें हेल्प करती है, तो अब ये आगे नहीं यार, उसकी भी मजबूरी होगी कुछ, तो मैं ये देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं मजबूरी है उसकी कुछ। जब गुस्सा आ रहा होता है ना किसी पे, पहले रिएक्ट कर देते थे, लेकिन अभी नहीं, नहीं मजबूरी हो गई। तो जैसे अभी बोलते हो तो आप हल्के भी हो जाते हो, आप समझने भी लगते हो कुछ, और दिखने भी लगता है कि हाँ कुछ मजबूरी है।
पहाड़ के हैं आप, तो आपको क्या लगता है आज आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें जहाँ के आप हैं उसका कितना बड़ा रोल है इन शेपिंग योर पर्सनैलिटी?
बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। और वो अच्छी बात यह है कि मैं शहरों में आते हुए भी शहर नहीं बदल पाया मुझे, वो जो बेसिक गुण हैं आपके, जो पहाड़ों से एकदम नेचर से जुड़े हुए हैं, वो कितना भी शातिर बन लो आप, तेज बन लो आप, कुछ भी स्मार्ट बन लो, कुछ भी नहीं नहीं, वो हैं वो आपके पास, वो आपके अंदर हैं, वो आपके ब्लड में, आपके सोल में हैं, वो आपके आत्मा में हैं। तो वो कुछ भी करके नहीं, लेकिन हाँ शहरी ज़रूरतें कई बार आदतें ऐसी बना देती हैं कि आप थोड़ा मिस करने लगते हो वो, लेकिन वो गायब नहीं होती, वो आपके पास है हमेशा। उसी में वो उसके कुछ जो झलके हैं वो यहाँ भी मिलते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हम स्ट्रगलिंग दौर में रहे थे, मीरा रोड से लेके महाड़ा, चार बंगला, इधर यारी रोड, सब जगह। तो मैं हर जगह प्लांट्स लगाता हूँ, हर जगह। ये जो चीज़ें हैं नेचर से जुड़े हुआ, मुझे पानी का साउंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पानी की इतनी दिक्कत है यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ पे बंद करना पड़ता है। तो लेकिन गांव में क्या है, झरने बह रहे हैं, तो वो जो झरने का, और हमारे यहाँ जो एक प्राकृतिक वो है स्रोत, तो उसमें से पानी आता है, हम वो पीते हैं, उसमें बहुत ही एकदम मिनरल वाटर, एकदम बहुत ही प्योर। तो उसका वहाँ पे बैठ के सब लोग, जो भी दिल्ली से या इंडिया से कहीं भी जब गांव में जाते हैं, तो सब लोग वहीं बैठते हैं नीचे, कि वो जो साउंड है वो एक वो जीवन का एहसास देता है। हाँ पूरा वो बेहतर रहता है नॉन स्टॉप, एक आध कोई डेगची या वो कसेरी लेके भरते हैं, तो उसका साउंड भी धीरे से लेके एंड तक खड़ा भरता है, तो बहुत अच्छा सुकून वाली चीज़ें हैं। तो आबो हवा वहाँ की बहुत अच्छी है, तो यहाँ की नहीं है, तो यहाँ पे आपको योगा करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो वो क्वालिटीज़ हैं वो चलती रहती हैं। एंड प्लस ध्यान, ध्यान का और इन्वॉल्वमेंट वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा गुण है, वो किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो फिर उसकी तह तक, मतलब बारीकी तक पहुँचते हैं, ये मैंने देखा है। तो वो लगन जिनको पता चल जाती है, जो जो भी पूरा ये पहाड़ी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत यूनिक क्वालिटीज़ हैं।
टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स।
माँ जो है वो, मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था माँ के, बहुत क्लोज था मैं, और वो 2007 में गुजर गई थी, उनको पेसमेकर लगा हुआ था, तो काफ़ी 25 साल तक उन्होंने उस पर सर्वाइव किया। मैं यहाँ पे जब स्ट्रगल कर रहा था तो पिताजी ने कई बार बोला कि यार एक बार देखने तो आ जाओ, ये है वो है, पहले तो मैं जाता था, जब जाता था, नहीं दिसंबर में आऊँगा, बार बार उसमें कैसे आऊँगा जो भी है वो, और वो चाहते थे कि एक्टिंग छोड़ दें, तब तक पिताजी ये चाहते थे, तो वो माँ के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे कि ये है वो है, ये तो तुम तो गैर जिम्मेदार हो, और ये है वो, माँ बीमार है, और ये वो सब चीज़ें पिताजी मना करते थे। लेकिन जब ओमकारा आई और वो काफ़ी लोगों ने सराहा उसमें रोल, तो फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। फिर तो जो भी गेस्ट आता था एक DVD लगी रहती थी, आइए आइए
देखिए
वो चल रहा है, तो मैं घर जाना ही मेरा बड़ा मुश्किल हो गया था, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और वो चालू हो गया ओमकारा, मैंने कहा यार। फिर कुछ भी आए, कोई भी गेस्ट आए तो ओमकारा, और अरे आओ आओ बैठे बैठे, 5-6 लोग आए, चला दी और बताइए क्या चल रहा है, ओमकारा यहाँ चले जा रही है, मैंने कहा एक तो और ज़्यादा एम्बेरसिंग ये हो गया था कि अब वो वही चीज़ जो उनकी सख्ती थी वो इतनी नरमी पे आई कि यार कि इतने खुश हुए कि 5-6 गेस्ट आए मिलने के लिए आसपास के, चाय वाय फिर आसपास की सोसाइटी के, और वो सबको बोल रहे हैं अरे यार फोटो तो खिंचा लो इसके साथ, तो मुझे लगा मैं भी चाह रहा हूँ, मतलब मैंने कहा नहीं नहीं, वो शर्मा रहे, हाँ मैंने कहा पिताजी नहीं खिंचाने उनको फोटो, नहीं खिंचाने आप, ऐसे थोड़ी होता है कि फोटो खिंचा लो इसके साथ, मतलब वो पूरी सोसाइटी को, तो बहुत ही एम्बेरसिंग था। मैंने कहा अच्छा इसी सब तक का, फिर ओके हाँ खिंचानी है भाई, मन नहीं है तो मत खिंचाओ, खिंचानी है तो यार अच्छा हाँ हाँ जी 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 खिंचानी है फोटो
खिंचानी। अच्छा, अगला भी क्या बोले?
और फिर दूसरे फिर बाहर आवाज, अरे आप फोटो खिंचानी है, वो आया हुआ दीपू आया हुआ है फोटो खिंचानी है, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ इसीलिए मैं नहीं आता हूँ ऐसे ऐसे, अरे इसमें क्या बात है, तो ये तो खुद ही बोलते हैं कि, मैंने कहा नहीं नहीं पर आप मत बोलो ना मेरे सामने ऐसे, तो बड़ा क्यूट सा भी लगता है जब वापस आता हूँ होटल में अगले दिन काम पे, अच्छा ठीक है, तो वो है एक पार्ट। तो सब लोग बोलते हैं कि तेरे पापा की आवाज़ से वो तेरा वो दिखता है कि वो सक्सेस को सबसे ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं, ये जो भी यहाँ पे ना वो सबसे ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा आई नो।
तब तक मकबूल और ओमकारा आ चुकी थी।
हाँ ओमकारा आ गया था और भी चल रहा था, अभी तक भी लास्ट ईयर वो गुजरे हैं, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, और जितना भी जिंदा दिल माने कि कोई भी फंक्शन नहीं था आसपास की सोसाइटी में, मोहल्ले में, एरिया में, जहाँ पे किसी का भी कुछ क्राइसिस हुआ और पिताजी हुआ ना, जब वो गुजरे तो उनसे बड़ी एज के जो लोग थे बूढ़े बूढ़े, वो सब इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं उनके लिए, मतलब पहाड़ों में, तो मैंने कहा नहीं आप रहने दीजिए दादाजी, नहीं ये मेरा बनता है, उसने क्या क्या किया है, तो वो जो कमाई देख के ना, मतलब मैं हिल गया, मतलब कि नहीं यार ये चीज़ें हमने नहीं कमाए, ये जो है ना इंसान कमाना जिसे बोलते हैं, ये
ऐसे लोग अब की पीढ़ियों में कम मिलते हैं क्योंकि सब व्यस्त है अपनी अपनी। हाँ
हाँ हाँ, तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, और एक बार ये भी होता था कि जब कहीं वो रिश्तेदारों के पास हैं तो फ़ोन करते थे वहाँ से और डायरेक्ट फ़ोन पकड़ा देते थे, ले बात कर, मैंने किससे पता नहीं, और फ़ोन घूमे जा रहा है इधर उधर, वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और ये सब, तो ये एक उनकी बड़ी वो आदत थी, तो मैंने कहा पिताजी मैं मीटिंग में हूँ ये कर रहा हूँ, अच्छा हाँ जी नमस्ते ताऊ जी, हम दादाजी, अच्छा वो मैं दादाजी नहीं हूँ मैं ताऊ जी, वो वाला अच्छा, तो कईयों से मिले नहीं, हाँ हाँ नहीं तू नहीं मिला, तो तब छोटा था 8 साल का तब मिले थे हम, अच्छा ठीक, तो वही सब आए लो, और बट वो है अब ये औपचारिकता है लेकिन वो काम करते हैं उनका,
है ना, वो उनके रिश्ते
उनके
हैं,
उनके रिश्ते। वो तो मुझे भी ये खुशी मिली कि उन्होंने जो उनका बुढ़ापा था उसको बहुत इंजॉय किया, और माँ का ये था कि बहुत सारे दोस्त जो थिएटर करते थे मेरे साथ वो बोलते थे कि ये एक्टिंग के गुण सारे तेरी माँ से हैं, और माँ सिर्फ मेरे और मेरे दोस्तों के सामने परफॉर्म करती थी और किसी के सामने नहीं, बाकी सब के सामने वो ऐसी थी, लेकिन उसके चेहरे पे खिलखिलाहट आती थी जब मेरे दोस्त आते थे, तो हाँ। सब लोग हाँ ये तो ऐसे बोलता है कि तुझे नहीं पता, और नए नए वर्ड सीखे थे कुछ, डोंट टच मी ऐसे ऐसे कर, मगो डोंट टच मी, वो ऐसे पकड़ते थे डोंट टच मी, तो ओह तो ना वो मजाक पूछे तो बोलता है डोंट टच मी ऐसे ऐसे करके, तो अच्छा सब हंसते थे, तो खूब मजाक उड़ाती थी मेरे सुन, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो था एंड और उसने कभी नहीं बुलाया मुझे कि मैं कहता था वहाँ आऊँ यहाँ से, तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं बोलने दे इनको। जब वो गुजरी उससे एक दिन पहले उसने बोल दिया था माने के आ जा कुत्तू आ जा, तब मैं जो हालत में गया हूँ मैंने कहा अरे बाप रे, तब वो था एंड मिला बात किया और उसके डेढ़ घंटे में ऐसे। तो ये वो है लेकिन वो साथ हैं वही ब्लेसिंग्स वगैरह वो चलती हैं वो, तो कई बोलते हैं कि आधे एक्टिंग के गुण तो तेरी माँ से आए तेरे पास, तो वो भी है। तो कई बार ये लगता है कि अगर मेरी माँ को भी वो सब फैसिलिटीज़ मिली होती है ना, जो ऐसा था वैसा था यार मैं यहाँ आ गया वहाँ पे वो है, एंड वही एक ख्याल आया और मैंने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ पे रखा कि मैं इसको वो सब चीज़ मैं वो करूँगा सब चीज़, तो ऐसी एक स्ट्रेंथ मिलती है। और अभी भी कि नहीं, और मैं कंपेयर भी करता हूँ, नहीं उसने तो पढ़ाई भी हमारे सामने सीखी थी माँ ने ना, तो एक वहीं पे दिल्ली में कुछ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र था, तो तीन चार हमारी पहाड़ी आंटियाँ थी, तो वो अपना एक बैग रखती थी और बुक वुक लेके और बिना अपने हस्बैंड्स को बताए खाना खा ले मैं जा रही हूँ कहाँ पढ़ाई करने, और ओ तीन तीन औरतें ऐसे करके 3 किलोमीटर पीछे जाके वो पढ़ के आते थे और अपना नाम लिखना सेंटेंस लिखना बड़ा क्यूट सा वो सब चला, तो खुद सीखा उसने माने, मतलब लगन तो है। अब वही चीज़ है कि वो नहीं थी फैसिलिटीज़ वहाँ पे ना, कि जब मैं अभी यहाँ पे उत्तराखंड गया तो वहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, मैंने कहा यहाँ पे हर जगह अगर स्कूल और वो जो पलायन हो रहा है पहाड़ों में वो ज़्यादातर या तो बच्चों की वजह से हो रहा है क्योंकि स्कूल, या बुज़ुर्गों की वजह से जो पेरेंट्स हैं उनके, हाँ इन दो वजहों से हो रहा है ज़्यादातर। अगर अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल्स वहाँ पे हो जाएं तो प्लान रुक जाएगा, बहुत रुक जाएगा।
आपको कभी ये लगता है कि अब जो असली सक्सेस आया है वो माँ नहीं देख पाई, उस चीज़ का कभी अफसोस होता है?
नहीं अब नहीं, अब नहीं, जितना भी देखा उतना ही था, अब ये सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब ये तो खुद ही ढूंढ रहे हैं हम, कई बार मतलब ढूंढते रहते हैं और कुछ बन जाता है तो उस हिसाब से लोग बोलते हैं कि ये सक्सेस है या नहीं है। हाँ माँ होती तो और बढ़िया होता है, अच्छा। है ना, बहुत अच्छा होता है मतलब कि वही खैर ठीक है होता है।
एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में आप पले बड़े हैं, फादर आपके गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जब 8th 9th 10th वाले जो इयर्स होते हैं उस समय तो यही होता होगा ना कि भाई इंजीनियरिंग की तैयारी करो मेडिकल की तैयारी करो, ये सब प्रेशर, और फिर कहाँ से थिएटर बीच में आ गया, वो शौक कहाँ से पनपा, वो कैसे हुआ?
वो ये हुआ कि सब लोग जब 11th 12th में सब लोग पहले से ही डिसाइड कर रहे थे कि यार कुछ पत्रकारिता में जा रहे थे,
अच्छा।
कुछ जर्मन सीख रहे थे दोस्त, कुछ CA वगैरह उसमें थे अकाउंटेंट्स में इधर उधर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि यार क्या करूं यार, तो मेरे मार्क्स थोड़े कम थे कुछ 56% और ऐसा कुछ था
12th में,
तो सब लोग लगे हुए इधर उधर, तो मैंने भी कई कॉलेजेस में जितने भी दिल्ली के कॉलेजेस थे जहाँ जहाँ सब दोस्तों के हो रखे हैं सब ने स्पोर्ट्स कोटे से मेरा कराने का वो किया, मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता था, तो जब वो चक्कर हो गए खूब सारे तो सब ने कहा यार क्यों क्यों जाना है कॉलेज यार क्या हो जाएगा, तो एक सीनियर सा बंदा था उसने बोला कि यार कुछ और कर लो यार इस बीच में, ज़रूरी है क्या, क्या क्या दिखाना है किसको, इस बीच में कुछ सीख लो। मेरे को वो बात लगी हाँ यार ये अच्छा है, वो कॉलेज में जाके क्या करेंगे, पास जाके डिग्री दिखाएंगे फिर भी नहीं पता वो मस्ती करेंगे, तुम कुछ सीख सकते हो ना अगर तुम, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए, तो मैंने कहा अच्छा। अरे उसी बीच में RLA कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे तो वो लोग एक प्ले कर रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी, तो वहाँ पे और एक दोस्त ने बोला यार वो मेरा एक दोस्त है राजेश डोबरियाल ने बोला कि मेरा एक दोस्त है यार दीपक उसको यार थोड़ा ड्रामा में इंटरेस्ट है तो तुम कर, हाँ हाँ बोलो बोलो, और फिर उसके बाद वहाँ परफॉर्म किया, वहाँ से फिर अरविंद जी ने देखा तो उनसे मिला मैं, उन्होंने पीठ थपथपाया बहुत बढ़िया बेटे को, तो मैंने कहा सर आपका ग्रुप ज्वाइन करना, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये थी कि जो उनसे मिला और उन्होंने कहा हाँ तो ठीक है परसों आ जाओ। मैंने कहा परसों नहीं, परसों तो मेरी शादी है तो तुम शादी में आ जाओ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैं और एक और दोस्त हम शादी में गए वहाँ पे पूरे शादरा में, शादी में बॉय अरे तो कमाल का डायरेक्टर शादी में ही है। तो हमने वहीं से शुरू किया, फिर छः साल मैंने वहाँ उनके साथ जितने भी थे क्लासिक्स वो सब किए वहाँ पे। तो वहाँ से धीरे धीरे कुछ आने लगा कि यार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ये सब है। फिर NSD क्या होता है, ये कोई ग्रुप रंगमंच क्या होता है, ये सब उस एरिया में फिर घूमा गया, फिर पता चला धीरे धीरे रुक के कि नहीं 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 हो सकता है। और मैंने एज ए स्टेपनी एक्टर में काम करता था, कोई सीनियर एक्टर नहीं आया तो मुझे पूरे जो प्लेज होते थे वो सारे मुँह ज़बानी याद होते थे, हर एक की लाइन, हर एक का
कहीं डायलॉग,
कहीं पे भी कोई भी, तो पूरा वो प्ले मेरे लिए जिंदगी की तरह रहता था। कि वो सिर्फ एक रट्टा नहीं है कि यहाँ से मुझे पूरी डिजाइनिंग ब्लॉकिंग यहाँ पे ये करना है, वहाँ से वहाँ हो जाएगा, रिएक्शन भी ये था जो बड़े वाले सीनियर एक्टर ने दिए थे वो वाले रिएक्शन चलते, अच्छा तो वो सब चीज़ें वो चलती रहती थी। तो कई बार उनका प्रोसेस भी पता चलता था कि यार नहीं नहीं। फिर मज़ा तब आया जब मेरा पहली बार कोई एक ओरिजिनल सा रोल मुझे मिला जो मैंने किसी का नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, तो उसको करते समय जो ढूंढते समय जो उसमें रहने में जो मज़ा आया, एंड वो था गिरीश कर्नाड का रक्त कल्याण, उसमें मैं जगदेव मिला था मुझे वो रोल। तो वो जब किया मैंने कि वो हाँ ये देखा ही नहीं मैंने कहीं, ये कहीं सुना भी नहीं है इसके बारे में,
तब आपके अंदर के एक्चुअली एक्टिंग स्किल्स या जो भी था वो निकल गया,
तब वो चला। अभी तक तो चल रहा है कि हाँ डायलॉग बोलना आता है ये वो, तो वहाँ से शुरू हुआ।
चलिए मैं आपको कुछ सुनवाती हूँ।
दीपक मेरा बहुत लाडला और चहेता अभिनेता है, बहुत छोटी उम्र में मेरे पास आया था और अस्मिता थिएटर में लगभग उसने 6 साल काम किया, विविध तरह के करेक्टर किए, गिरीश कर्नाड के नाटकों से लेकर कोर्ट मार्शल तक, नुक्कड़ नाटकों से लेकर तमाम जगह पर वो डटा रहा। और सबसे बड़ी बात रही कि दीपक भक्त लगातार नाटकों की वजह से लगभग 5-6 साल तक लगातार गंजा रहा, क्योंकि नाटकों के अंदर कोई ना कोई करेक्टर ऐसा होता जिसके बाल छोटे होते थे। और दीपक ने बहुत मेहनत के साथ काम किया और दूसरे एक्टर्स के लिए वो प्रेरणा का काम करता था, और छोटी उम्र के अंदर ही उसने इतना अच्छा काम किया, दिल्ली के दर्शकों के साथ साथ कॉलेजों में भी उसके बहुत बड़ा फैन क्लब बन गया था। और दीपक काम को सबसे ज़्यादा वरीयता देता था। एक दिन दीपक बहुत उदास था, मैंने पूछा दीपक क्या हुआ, नहीं बोला। मैं जब उसको डांटा तब उससे रोते बोला कि मेरी माँ हॉस्पिटल में 3 दिन से, मैं मिलने नहीं जा पाया। मैंने उसको तुरंत डांटा कि अभी जाइए, पर नहीं मुझे रिहर्सल करनी है कल शो। मैंने कहा शो ठीक है, शो है, लेकिन आप अभी जाइए। मैंने एक एक्टर के साथ उसके घर पर उसको भेजा, वो हॉस्पिटल में गया माँ से और तब मिला। तो दीपक बहुत डेडिकेटेड था और इतना डेडिकेटेड था उसकी ग्रेजुएशन अस्मिता में रहते हुए पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब भी पेपर होते थे तभी हमारा थिएटर फेस्टिवल होता था, हम लगातार जो 2-2 महीने थिएटर फेस्टिवल करते थे और हर नाटक में दीपक होता था। तो ये दीपक एग्जाम देने जाता था, कई बार एग्जाम छोड़ देता था, तो मैं मुझे कई बार लगता था कि दीपक तुम पेपर दे लो, तो वो कहता कि सर मैं पढ़ूँ कम में, और मैं कहता तुम ज़्यादा जानते हो, जो पेपर के अंदर आ रहा था उसे ज़्यादा जानते हो। खैर दीपक एक इस तरह का एक्टर रहा है मेरे साथ, जिसने मेरे साथ पूरा भारत घूमा, तमाम जगह नाटक किए हैं, लगातार लगातार उसने हर जगह मेरे साथ रहा, छाया की तरह मेरे साथ रहता था उस समय। और मैं जब दीपक बम्बई चला गया उसके बाद, एक बार मैं 2003 की शायद बात है ये, तो उस समय एक ऐसी ट्रेजडी हुई कि मुझे अपनों की वजह से, अपने ही कुछ लोगों की वजह से अपने मोबाइल को रात को गिरवी रखना पड़ा एक ढाबे के अंदर। उस दिन दीपक मेरे साथ था, वो एक ऐसी रात थी जिसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। और क्योंकि दीपक पूरी रात रहा, मेरा इल्यूजन टूटा था, बहुत सारी चीज़ें टूटा था, मेरे भरोसे टूटे थे, लेकिन ये दीपक मेरे साथ रहा हमेशा। और दीपक इसे मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस तरह के बहुत सारी घटनाएं दीपक के साथ हैं, बहुत सारी यादें हैं जो बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, जहां पर हम एक घंटों बात करते थे, घंटों काम करते थे, और उसने कभी भी काम से मना नहीं किया। दीपक की एक सबसे बड़ी खासियत रही है कि लगातार काम करता रहा है। और अस्मिता के प्रारंभिक अभिनेताओं में था, एक अनगढ़ अभिनेता मेरे पास आया था और आज एक बहुत बड़ा अभिनेता बन गया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं उसकी फिल्म को देखता हूँ, और जब उसने उसको पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जब उसने मेरा नाम लिया वहाँ पर, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आमतौर से अभिनेता बड़े बनने के बाद भूल जाते हैं, तो दीपक ने मुझे याद रखा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शुभकामनाएं दीपक, आगे बढ़ो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और खुशी देते रहो, शुभकामनाएं।
थैंक यू। ये है मतलब, ये होता है पार्ट है मतलब। हाँ, अब गुजरे हो मतलब उसमें है। और क्या कि जो भी मेरा सीनियर है कहीं भी थिएटर में या रियल लाइफ में भी, उसका वही रिस्पेक्ट है जिंदगी भर के लिए। और जिनकी वजह से मेरी लाइफ ने शेप लेना शुरू किया है, तब्दीली आई है, उनमें सबसे पहले अरविंद जी ने, मतलब उन्होंने जो मुझे रोल्स दिए उस पर जो लोगों को यकीन नहीं था कि इतना पतला सा एक्टर कैसे कर लेगा, ये रोल कैसे कर लेगा, जो भी था, लेकिन वो उनका यकीन बहुत था। और एक बार अरविंद जी ने बोला कि यार ग्रुप बंद करने की नौबत आएगी, कुछ बड़ा उधार चढ़ गया ग्रुप पे, तो कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती हमको, या अपने पैसों से ही लगाते हैं, जो टिकट से आता है वो सब है, कोई स्पॉन्सर भी नहीं था, तो ग्रुप बंद करना पड़ेगा। तो बहुत इमोशनल हो गए हम सब लोग। तो वहीं पे एक प्ले हो रहा था, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, प्रगति मैदान में, और उसमें हर दिन चार शो करने थे और उसके लिए सिलेक्शन होना था। तो हम अगले दिन स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशन जो बोलते हैं वो था, टेस्ट था। तो वहाँ पे सब ड्रामेटिक्स के लोग आए हुए थे और सुबह से कम 100 टीमों का वो चल रहा था कि यार, क्योंकि कमाई का भी एक जरिया था वो, एक महीने तक, वो 15 दिन तक करना है और काफ़ी अच्छा अमाउंट आ जाएगा। तो हम रात में गए नहीं, तो जो मंडी हाउस का बीच वाला सर्कल है जिसमें वो बड़ा लैंप पोस्ट है, वहाँ पे हम बैठे हुए थे और हमने वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी। दो हमारे बिहार के दोस्त थे, एक सत्यकाम था, सत्यकाम जो आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर में, सत्यकाम, विष्णु और ओपी, तो तीन ये हमारे दोस्त थे। तो इन्होंने वहाँ पे एक फोक है बिहार का, तो वो औरतों के ऊपर है कि औरतों का जो भ्रूण हत्या से लेके उनकी समस्याओं के ऊपर ये वाला है, दो रंगी नीतियाँ, एक गाना था। तो वो उस गाने का और प्ले डिज़ाइन किया हम सब ने, ये करना है वो करना है। और अगले दिन परफॉर्मेंस था, सीधा हम वहीं सोए, पता नहीं क्या कि हमने चादरें ले ली वाइट कलर की और ऐसे गए थे कि कुछ 7-8-9 लोग, और वहाँ गए और हमने जो परफॉर्म किया वहाँ पे, तो मैं तो वो जो ऑडिशन वाले थे उनकी आंखों में आंखें गड़ा के जो मैंने दर्द निकाला है, मतलब ये बोला तो वो ना वो ब्लश भी कर गए, वो हिल भी गए थोड़े, वो भी हो गए ओके या दिस टाइम्स फाइनल। तो ये या फाइनल या ये, तो वो जो मिला तो वहाँ पे मिल गया वो, तो वहाँ से दोबारा से ग्रुप ने
कुछ याद है उसका कुछ वो गाना या जो कुछ थोड़ा सा करके दिखाइए,
हल्का सा, दो रंगी नीतियाँ, दो रंगी नीतियाँ, दो रंगी नीतियाँ, क्यों ये तूने बनाई दो रंगी नीतियाँ, ऐसे था मतलब इसी में। तो
आपका अपना पार्ट कोई गुस्से वाला जवाब
यही था, ये करूँ ना पूरे, अभी तो ऐसे कर रहा हूँ, तो उसमें तो पूरे कलेजा निकाल के गए, बेटा जब तू अभी वैसे हो रहा है। खैर, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, तो हमने और उसी दौरान से हमने स्ट्रीट प्लेस भी वहाँ पे चालू किए पूरे दिल्ली में। तो फिर उसके बाद जो मजदूरों को दिल्ली से फैक्ट्रियों से निकाला गया था है ना, कि उस कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो काफ़ी लोग वो हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। तो हमने पूरे एरिया में ओखला, वजीरपुर, आज़ादपुर मंडी, नंद नगरी, सब जगह, पूरा गुड़गांव, इधर उधर सब जगह हमने स्ट्रीट प्लेस किए सैकड़ों उनके साथ। और मज़ेदार बात ये रही कि जब उनको 2-2.5 साल बाद जब उनको अलग अलग जगहों पे जॉब मिली उन मजदूरों को, तो कईयों ने अपनी 4-5 महीने की सैलरी से इकट्ठा करके हमें वही प्ले करने के लिए कालका बद्दी बुलाया था.
स्वीट.
क्योंकि हम उनके साथ थे, मतलब हमेशा से था, तो उन्होंने वहाँ बुलाया. कालका में हम प्ले करने गए थे कि वो आना है और वही नाटक चाहिए जो हम, वो हमारा नाटक है. तो वो हम स्ट्रीट
लोग से काफी जुड़े रहे आप. हकीकत के
हाँ वो है उसे, उनसे
पैसा तो मिल नहीं रहा था, तो घर पर कभी उलाहने मिलते थे कि बाकियों के बच्चों को देखो, वो जैसे हाँ, वो डायलॉग है,
वो, वो रोज
अरोड़ा जी के बेटे को, शर्मा जी के बेटे को देखो.
वो रोज का ही वही काम था कि ये हो रहा है कि वो नहीं लगता था. फिर क्या होता था कि दिल्ली में एक सीरियल आता था भंवर, तो भंवर से क्या था कि फिर वही स्टेपनी एक्टर टाइप का, कोई कोई मुंबई से कोई एक्टर नहीं आया तो अचानक से कुछ अर्जेंसी पड़ गई तो मुझे बुला ले, दीपक कल छूट है किन कम. मैंने कहा यस यस यस. तो वो जो होता था कि यार चार दिन का जो अमाउंट होता था, चार दिन में आपको 12,000 रुपये मिल जाते थे.
उस समय बहुत बड़ा,
उस समय बड़ा अमाउंट था, तो पूरा तो वो चीज़ें होती थी. तो वो रहा के दिल्ली में भी, दिल्ली में इतना वो खर्चा नहीं है, वो तो अच्छा अमाउंट है पूरा.
और अगर आप अपने घर में परिवार के साथ रह रहे हैं
हाँ तो भी नहीं. हाँ तो वो सब था. तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब का एक बड़ा वो था कि जॉब कर लो, ये तो कभी कभी आएगा पैसा, रोज थोड़ी आएगा, या इससे आप जिंदगी भर कमाई थोड़ी कर सकते हो, इस तरह का एक माइंडसेट था उनके पास.
क्या जवाब देते थे आप, क्या होता था घर में?
नहीं कोई नहीं, मुंबई जाएंगे, मुंबई जाके होगा, अच्छा मुंबई जाएगा, अच्छा ये देखो. तो वो रहता था
उस पर, तो और ताने पड़ते हैं.
हाँ उस पर भी और ताने पड़ते थे, बट फिर आ गया विद्रोह करके कि नहीं जा रहा, तो ठीक है ये सब था. एंड बहुत ही जब आ रहा था तो पिताजी को पता चला, उन्होंने पता था कि यार आसपास सोसाइटी में लोगों को क्या बोलेंगे. और ऐसा था कि कुछ दो तीन एग्जांपल्स थे हमारे यहाँ जो मुंबई से गए थे और वो ना मारे मारे फिर रहे थे, कोई तबीयत ख़राब हो गई किसी की, कोई वैसे बैठा हुआ था, हाँ ड्रिप व्रिप चल रहा था उसका, देखो क्या. तो मैंने कहा यार उसकी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, वो इससे वो क्या मतलब है कि वहाँ पर देखो कैसे हालत में पड़ा हुआ है, मतलब जो भी है. तो उन चीज़ों से वो थोड़े से डरे हुए थे. तो उन्होंने आते समय बोला देख भाई ऐसा है जल्दी तय कर लियो यार, कुछ यहाँ पे कोई नाक वाक मत कटवा दियो कुछ. मैंने क्या क्या नाक वाक मत कटा दो, मैं एक ऑलरेडी एक ऐसे शहर में जा रहा हूँ जहाँ आप कैसे बात कर रहे होते जी, आप क्या वो तो डिमोरलाइज कर रहे हो आप. नहीं मैं कह रहा हूँ तो कर तेरे को जो करना है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एज की वो गवर्नमेंट जॉब की जो उम्र है वो पास ना हो जाए तब तक देख ले, उससे पहले कर ले जो भी करना है. मैंने कहा ठीक है. फिर मैं आया देखा, फिर होने लगा कुछ. और वही किस्सा, एक बार मकबूल बहुत अच्छी फिल्म थी, तो उसमें सब लोग जो पूरा बैक वो था, एम्बियंस ही ऐसी थी, सब एक्टर्स थे पूरे थिएटर के. एंड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये. मैंने वहाँ पे गया तो बहुत एक्साइटमेंट में बताया मकबूल कर रहा हूँ, मकबूल कर रहा हूँ. तो पिताजी पूरे ऑफिस को लेके चले गए मकबूल दिखाने, सबको मजा आया मकबूल देख के. और उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, तो वो आए पर्सनल रात को, देखी बोलता तो ऐसे जैसे मकबूल खुद ही है, ऐसे बोल रहा है मकबूल कर रहा हूँ. मैंने कहा मतलब शुरुआत है कोई अच्छा रोल मतलब ऐसे डांट भी पड़ी उन्हें, वो उस पर नहीं है. मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर ओमकारा है, तो ओमकारा के टाइम पे करे नहीं नहीं मैंने कहा पिताजी इसमें थोड़ा अच्छा रोल है देख लीजिए. नहीं नहीं पहले मैं खुद देख के आऊँगा
सबको नहीं
तो पहले वो गए, पूरा हॉल भरा हुआ था वहाँ पे, और देखा रिस्पांस की यार कमाल का रिस्पांस आ रहा है, सब पूछ रहे हैं. फिर वो भाग के आए, फिर संडे का पूरे ऑफिस का उन्होंने टिकट विकेट बुक कराया, नहीं नहीं चलो चले चली, और फिर वो देखने आए तो हाँ इसमें अच्छा है. तो वहाँ से चीज़ें बदल दी. तो उसका वो जिंदगी भर विशाल जी के लिए शुक्रिया निकलता है मेरे दिल से कि यहाँ पे एक्टिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन इतने बढ़िया कमर्शियल सेटअप में आपको फिट करना है, वो भी एक न्यू कमर को, वो जो उन्होंने किया है वो तो असली गॉडफादर है मेरे यहाँ पे, है ना. तो वो है, तो वो तो जिंदगी भर का एहसान है.
दीपक बहुत बहुत मुबारक जो सक्सेस तुमने पाई है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ. और तुमने जो काम किया था ओमकारा में, वो मैं आज जब भी देखता हूँ वो फिल्म, मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे बिना वो फिल्म अधूरी रहती. तुम बहुत अच्छे एक्टर हो.
ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें आपको रुला देती हैं अंदर से ना, बहुत वो कर देती हैं, मतलब ये रिस्पेक्ट है, थैंक यू सो मच श्रीजा। मतलब
दीपक तुम्हें याद है धनुर्विज मनु के टाइम पे तुम अकेले वो एक्टर थे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कराई थी। माधवन ने हाँ बोल दिया था, कंगना ने हाँ बोल दिया था, पर दीपक डोबरियाल हाँ नहीं बोल रहा था।
इनको भी आपने इंतजार कराया बताइए, वो कह रहे हैं कि माधवन ने हाँ कर दिया, कंगना ने।
क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ल्ड सिनेमा का भी असर आता है हॉलीवुड का, वहाँ पे हावी बारदेम कुछ कर रहा है, हाँ वो चल रहा है, और यहाँ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन चल रही है, जोकर आ रहा है, ये उनका हम ये एक अपना वो रहता था यार। मैं उन सर से बोला, आनंद सर से भी मैंने, सर क्या मैं शादी के पंडालों वाला हूँ क्या, मैं पंडित बन जाऊँ क्या, शादियाँ कराता रहूँ क्या, वहाँ देखो ये हो रहा है वो हो रहा है यार, अब क्या करें, यहाँ की जरूरत उनकी बड़े क्यूट क्यूट यार है, अब तू अलग तरह का पंडित बन जा।
पुराने जमाने की कोई फिल्म जो आपको लगता है काश ये रोल मैं करता कर पाता आज?
गाइड, गाइड राजू, राजू गाइड, यस ऐसा यार बना दो, कोई बना रहा है हाँ मैं करता हूँ, हाँ हाँ ठीक है फ्री में करूँगा, हाँ कहाँ है, हाँ।